मेरे अभिन्न युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे दो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी घटनाओं को और खबरों को देख लेते हैं। ये सब अखबारों में तो नहीं है, लेकिन एक दो अखबारों ने इसे मेंशन किया है और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण भी है, और वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, हिंद महासागर। राइट, हिंद महासागर में एक आइलैंड है, द्वीप है, जिसका नाम है रीयूनियन, द्वीप का नाम। राइट, और इस द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। मैं प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से बता रहा हूं कि कैसे किसी घटना को आप पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। महासागर है हिंद महासागर, द्वीप का नाम है रीयूनियन आइलैंड, और इस पर अधिकार है फ्रांस का, और इस आइलैंड में एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि जहां अभी भी विस्फोट होते हैं, उसका नाम है पिटोन डे ला फोर्नाइस। फ्रांसीसी नाम है ना, पिटोन डे ला फोर्नाइस, जिसका हिंदी में अनुवाद होगा भट्टी का शिखर। भट्टी का शिखर, भट्टी जो जलती है ना, हलवाइयों के यहां शादियों में बड़ी बड़ी भट्टियां जलती हैं, जिन पर मिठाइयां बनाई जाती हैं, खाना पकाया जाता है, ये ज्वालामुखी का नाम है। तो इस ज्वालामुखी में फिर से अब विस्फोट होने लगा है। यहां एक टर्म है आपके ज्योग्राफी का, और वह है फिशर वेंट। जनरली किताबों में यह पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो नहीं, एक आप यूं कह लीजिए कि करंट अफेयर्स का हिस्सा बन जाता है, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि ये फिशर वेंट क्या होता है। ज्वालामुखी के बारे में आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो जमा हुआ होता है, आप कह लीजिए कि एक लसलसा पदार्थ, वो बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के लिए एक मुख बनता है, विवर्षा होता है ना, क्योंकि पृथ्वी को फाड़ करके वो सारा का सारा अंदर का जो लावा होता है वो बाहर आता है, तो एक मुख होता है, ठीक है। लेकिन ये जो फिशर वेंट है वो कुल मिलाकर के अलग इस मायने में है कि ज्वालामुखी के क्षेत्र से कई स्थानों से एक साथ लावा, गैस, राख के फव्वारे बाहर आने लगते हैं, यानी कि यहां केवल निकलने का एक ही द्वार नहीं है, बल्कि कई कई द्वार बन जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी है, तापमान इतना ज्यादा है कि वो कई जगह से परतों को, पृथ्वी के परतों को फोड़ करके बाहर निकलने लगता है, तो इसे कहते हैं फिशर वेंट। और इस ज्वालामुखी की जो स्थिति है वह इसी तरह की है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यह सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, कौन जाने कि प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। रेडियो न्यूज में भी, और फिर आपने बकायदे डीडी न्यूज में भी, अखबारों में भी इस पर दिया हुआ है, प्रलय, प्रलय, समाप्ति, खत्म, नष्ट, विनष्ट, विनाश, तो इसका संबंध डिफेंस से ही होगा। तो ये हमारे यहाँ की एक मिसाइल है जिसका परीक्षण किया गया है, और जो ज्यादातर हमारे मिसाइल्स के परीक्षण होते हैं, आप जानते हैं कि उड़ीसा में जो एक स्थान है चांदीपुर में, अब्दुल कलाम द्वीप, उससे इसका परीक्षण किया गया है। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली और कम दूरी की मिसाइल है जिसका नाम है प्रलय। इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर के आसपास ही है, तो बस प्रलय दिमाग में रखिए। और ये मिसाइल्स के बारे में, मित्रों, राज्यसभा और लोकसभा के जो सत्र चल रहे थे अभी स्थगित कर दिए गए हैं, यूं कह लीजिए कि जो अभी का सत्र था, शीतकालीन सत्र, वो समाप्त हो गया है। पिछले साल इस तरह का एक प्रश्न आया था, इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि इस बार के लोकसभा में 82% काम हुआ, 82%, ठीक है, चलिए, लेकिन राज्यसभा में बहुत कम काम हुआ है। राज्यसभा में काम हुआ है 48%, जो बहुत कम है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जब सत्र में होते हैं तो देश का बहुत अधिक धन खर्च होता है, और साथ साथ ये भी है कि हमने जिन प्रतिनिधियों को विचार विमर्श के लिए वहां भेजा है वो शायद अपना दायित्व सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इससे ये भी सिद्ध होता है। राज्यसभा में जो इतना कम काम हुआ है उसके पीछे शायद आपको कारण मालूम हो कि हमारे राज्यसभा के कुछ सांसदों को, जो राज्यसभा के उस समय जो सभापति उपसभापति होते हैं, उन्होंने निलंबित कर दिया था अनुशासनहीनता के कारण, तो लगातार ये बायकॉट करते रहे, राज्यसभा की जो बैठकें थी वो स्थगित होती रहीं। कहा गया कि अगर सांसद माफी मांग लें तो उन्हें फिर से आने की अनुमति दे दी जाएगी, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इस कारण कामकाज नहीं हो सका। यहां एक बात आपको और ध्यान में रखनी होगी कि देखिए, जो कोई भी संस्था हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, उसके स्पीकर, चेयरमैन जो भी है वो होते हैं, वो सर्वे सर्वा होते हैं। हो सकता है कि उनसे कहीं भूल चूक हो गई हो, लेकिन उसकी गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन उनके आदेश का पालन करना दूसरे सदस्यों की एक जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है कि पालन करें। चलिए, निलंबन कर दिया गया तो संदर्भ में तो अब नहीं आ सकते, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि अनुशासनहीनता हुई है तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए माफी मांगने से भी हिचक नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं और उनके आचरण का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, यानी कि केवल जनप्रतिनिधियों पर ही पड़ता है बल्कि नागरिकों पर भी पड़ता है। ये एंगल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि ये एक नई घटना है और एक ऐसी घटना है जिसका उल्लेख आवश्यकता अनुसार आप जो फोर्थ पेपर होता है एथिक्स का उसमें भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि जो पॉलिटिकल साइंस का मेंस का जो आपका सेकेंड पेपर होता है उसमें भी आपको इसकी गुंजाइश दिखाई पड़ जाए। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है दो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के बारे में। पहला निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा निर्णय है हाई कोर्ट का। तो पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया था, सामान्य तरीके से हम समझते हैं, वो मामला ये था कि आंध्र प्रदेश में कुरनूल में एक मंदिर है, बमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, आपको नाम याद नहीं होगा तो कोई ऐसी बात नहीं, और साथ ही साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो वो जो मंदिर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां दुकानों की नीलामी होनी थी। अब देखिए, मंदिर के आसपास तो जो दुकानें होंगी वो पूजा सामग्री यही सब चीजें ज्यादा रखते हैं, तो नीलामी होनी थी, तो इसकी नीलामी के लिए बकायदे एक अधिसूचना जारी की गई कि भाई इस डेट को नीलामी होगी ये है, लेकिन उसमें ये इसका उल्लेख किया गया खासकर कि इस नीलामी की प्रक्रिया में केवल हिंदू धर्म के लोग ही भाग ले सकते हैं। अब वो मंदिर है, मंदिर परिसर में दुकानें खुलनी है, तो यह है कि वहां जो दुकान के मालिक होंगे जो वो केवल हिंदू ही होने चाहिए। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया। सीधी सी बात है कि रद्द होना ही था कि क्योंकि हमारा अनुच्छेद जो 14 और 15 है ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। मैं अनुच्छेद 14 15 के बारे में अपने जानूंगी, जो समानता की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि गैर हिंदुओं को मंदिर की नीलामी प्रक्रिया में धर्म के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि परिसर में कोई ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए जो खासकर मंदिर और या जो श्रद्धालु होते हैं उनकी आस्था का अपमान करने वाला हो। जैसे सीधी सी बात है कि वहां शराब नहीं बेची जा सकती, जुआ नहीं खेला जा सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जो गैर हिंदू हैं वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्योंकि सीधे सीधे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, धर्म से भी जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये अपडेट आपके पास होनी चाहिए। जो दूसरा निर्णय है ये हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, और हाई कोर्ट को भी हम एक तरीके से हायर जुडिशरी में मानते हैं, है ही, ये केरल हाई कोर्ट का एक डिसीजन है। अब आप देखिए कि केरल हाई कोर्ट का क्या डिसीजन है। एक मुस्लिम महिला हैं, उन्होंने बकायदे एक याचिका दायर की, नीचे से चूंकि परिवार न्यायालय ने उनको स्वीकार नहीं किया, वहां कुछ नहीं कर पाई, तो उन्होंने बकायदे हाई कोर्ट गई और वहां उन्होंने एक याचिका दायर की, और याचिका में उन्होंने ये कहा कि उनके जो पति हैं वो उनके साथ समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनके साथ रह भी नहीं रहे हैं और समान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। समान व्यवहार का क्या मतलब हुआ, किसके तुलना में समान व्यवहार? देखिए, मुस्लिम समुदाय में ये परंपरा है कि वो चार पत्नियां रख सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि यहां जो समान व्यवहार की बात की जा रही है वो चारों पत्नियों से समान व्यवहार की बात की जा रही है। यहां मामला ये था कि उन्होंने जो पहली पत्नी थी उनसे अलग हो गए, वो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वो वहां रहने लगे, इनके साथ रह भी नहीं रहे थे, मामला कुल मिलाकर यह था। हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है? हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, मुस्लिम पति का पत्नियों के बीच भेदभाव करना या बराबरी का व्यवहार न करना तलाक का वैध आधार है और पत्नी ने अपने पति से तलाक की मांग की थी। चूंकि पति समान व्यवहार नहीं कर रहा है तो इसीलिए यह तलाक का आधार बनता है। बल्कि यहां तक कि हाई कोर्ट ने कुरान को भी कोट किया है। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि कुरान में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर पति एक से ज्यादा पत्नियां रखता है तो वह सभी पत्नियों के साथ बराबरी का व्यवहार करेगा। यह कुरान में कहा गया है, ये हाई कोर्ट ने सामने रखा। तो दोस्तों, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इस बीच में, एक सुप्रीम कोर्ट का और एक हाई कोर्ट का आया है, और आप देखते हैं कि ये जो दोनों निर्णय हैं कहीं मूल अधिकार से हमारे जुड़े हुए हैं, कहीं हमारे समानता के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, कहीं हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, कहीं वो धर्म से जुड़े हुए हैं, समुदायों से जुड़े हुए हैं, कहीं सीधे सीधे आप ह्यूमैनिटी से, मानवता से भी जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों निर्णयों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, और बहुत अच्छा होगा कि आप जब भी इससे संबंधित कोई उत्तर लिख रहे हों तो भले ही थोड़ा सा ही सही लेकिन इसका उल्लेख करें। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही है, आप सब देख लेंगे। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होने वाली हैं, उसके लिए नीरज कुमार तिवारी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका गांव है तिवानी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश के हैं। तो नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्नेहा को। स्नेहा, तुमने बहुत अच्छी कविता लिखी है, बहुत अपीलिंग है, उसमें कविता के प्राण हैं, तत्व भी हैं, और मैं चाहूंगा कि इस अपनी आदत को कह लो या अपनी इस भावना को कह लो या अपनी इस योग्यता को कह लो, बनाए रखो। बहुत अच्छी कविता तुमने भेजी है। दूसरे जो ईमेल लिखने वाले हमारे मित्र हैं वो हैं सुलभ तिवारी, कानपुर उत्तर प्रदेश से, प्रखर, सोनल सरताबे, पूजा शाक्य, राधिका साहू, रोहताश गुर्जर, सोनी सिंह पटना बिहार से, अभिषेक राजपूत विसंगपुरा मध्य प्रदेश से, और आकाश चावन नांदेड़ महाराष्ट्र से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।